لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹاپک ہمارا ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں ہے کہ ہم اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں اور کیا کریں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے وہ سورۃ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال نشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور تاک کی اور رات کی جب کہ وہ چلنے لگے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم کھائی تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. اور یہ جو 10 دن ہم سب کے پاس آنے والے ہیں بہت قیمتی دن ہیں، کہ جیسے رمضان کی آخری 10 راتوں کی اہمیت ہے تو دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن اہم ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان دنوں میں انسان کون سے عمل کرے اور کیسے ان سے فائدہ اٹھائے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ عشر ذو الحجہ میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی ان دنوں میں نیکیاں کرنے سے انسان کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں کہ جس سے جتنے درجے جہاد میں جانے سے بھی نہیں. ایک ہی شخص ہے جو درجوں کے اندر اس عمل سے یعنی اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو خود بھی وہاں شہید ہو جائے، اس کا گھوڑا، اس کی ہر چیز جو ہے وہاں کام میں آ جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے، ایسا شخص جو ہے وہ اجر کے اندر یعنی اجر پا سکتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ان دنوں کی قدر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح رمضان آیا اور آ کے چلا گیا تو یہ دن بھی آئیں اور آ کے چلے جائیں. اس لیے ہمیں وقت سے پہلے اس کا اندازہ لگانا ہے کہ ہم اس دن میں کیا کر سکتے ہیں، کیسے یہ ہوگا. تو اس کے بارے میں جو کام ہم کر سکتے ہیں دنوں میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے اور قرآن پاک کے انداز سے سمجھ میں آتے ہیں، تو پہلی چیز کیا ہے؟ روزے رکھنا. یعنی ان 10 دنوں میں کثرت سے روزے رکھنے کی بات پائی جاتی ہے. دوسرا عمل ان دنوں میں جو ہوگا وہ قربانی کا ہوتا ہے. پھر تیسرا عمل اس میں تکبیرات کو پڑھنے کا ہے، اور پھر حج. تو ہمیں ذکر اذکار، اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، تہجد، کیونکہ ہر نیکی کا اجر جو بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کاموں کا اجر بھی بڑھ جائے گا. تو لہٰذا ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ ہم ان دنوں کو کیسے باعث خیر کر لیں اپنے لیے. سب سے پہلے اگر ہم ان دنوں کے روزوں کی بات دیکھیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکم سے لے کے 9 ذی الحج تک کے جو روزے ہیں، یعنی 8 تک بلکہ آپ سمجھیں کہ وہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. और जो नौ ज़िलहज का रोज़ा है ये 2 साल के गुनाहों का कफारा है, एक गुजरा हुआ साल और एक आने वाला साल। यानी अल्लाह ताला बंदे को इतना ज़्यादा पाक करना चाहता है गुनाहों से और उसको नेकियों से इतना करीब करना चाहता है कि जब इंसान वाकई अल्लाह ताला के लिए खालिस होता है तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ मामला अच्छे से अच्छा करते हैं। हदीस में आता है हज़रत जाविर रजी अल्लाह ताला अन्हो से, मा मिन अय्यामिन अफ़दलु इंदल्लाही मिन अय्यामी अशरी ज़िल हज्जा। अल्लाह ताला के नज़दीक अशरे ज़ुलहज्जा से अफजल कोई दिन नहीं। एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये ज़्यादा अफजल है या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करना? तो आपने फरमाया, ये दिन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से ज़्यादा अफजल है। अलबत्ता वो शहीद जिसका चेहरा मिट्टी में खाक आलूद हो गया हो, वो इससे अफजल है। यानी जब इंसान इतने बेदर्दी से लड़े कि उसकी जान और माल सब कुछ चला गया और कुछ भी वापस ना आया, वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रिवायत है, आपने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक अशरे ज़ुलहज्जा में किए जाने वाले अमल से बढ़कर ना तो कोई अमल अफसल है ना पसंदीदा, लिहाजा इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहा करो। ये तबरानी की रिवायत है, यानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बहकी की रिवायत है कि तुम इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। इनमें से एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर और इसमें किए जाने वाले अमल का सवाब 700 गुना तक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह की एक बात तिरमिज़ी और इब्ने माजा और बैहक़ी में नकल की कि अल्लाह ताला के नज़दीक कोई अमल अशरे ज़ुलहज्जा में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। इनमें से एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और एक रात का क़याम लैलतुल कदर के क़याम के बराबर है। तो मेकअप करने के दिन है, अगर किसी से रमज़ान में नेकियाँ छूट गई ना कर सका तो फिर वो चीज़ इंशाल्लाह ताला अब दोबारा उसके पास इसका मौका है कि वो इसको कर सके। और अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि कसम खाई है ना वल फज्र, कसम खा के किसी चीज़ की अहमियत को बढ़ा दिया जाता है, तो लिहाजा बेहतर है कि इंसान इस चीज़ की कदर करे और इससे और ज़्यादा फ़ायदा ले। अब सवाल पैदा होता है कि हम करें क्या, किस तरह इस दिन का इस्तकबाल करें इस महीने का। तो सबसे पहली चीज़ जो इस महीने के नाते से है, जो चांद देखने से ही शुरू हो पहले होगी, वो क्या है कि इंसान अगर अपने नाखून और अपने फालतू बाल जो भी ज़ेरे नाफ या जिस्म के हैं उनको अगर पहले से काट ले, फिर ज़ुलहज्जा का चांद नज़र आ जाए तो उसके बाद ना काटे, ना नाखून तरशवाए ना बाल कटवाए। ये मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिसने जुलहज्जा का चांद देख लिया और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता है तो इसे बाल और नाखून तराशने नहीं चाहिए। यानी ये एक मुस्तहब अमल है, फर्ज तो नहीं लेकिन इसका अजर बहुत है। अब आप देखिए कि 10 दिन जितने मर्जी नाखून बढ़ा लें, जिन लोगों को शौक है नाखून बढ़ाने का 10 दिन मौका मिल रहा है। फिर इस तरह आप देखिए कि इससे क्या फायदा होगा कि जब इंसान अल्लाह ताला उसको किसी चीज़ से रोके तो रुकने की आदत, और जब कहे कोई काम तो उसको कर ले। अब इसके बाद क्या है कि काटने फिर कब है, इसके बारे में आता है कि ईद उल अधा की अजान नमाज के बाद भी काट सकते हैं, और अगर कुर्बानी उसी दिन कर रहे हैं तो कुर्बानी के बाद काट लें तो भी ये चीज़ दुरुस्त है। बहुत सारी बहनों के लिए ये चीज़ एक फितना बन जाती है जब उनको ईद की तैयारी के लिए एक दिन पहले जाके फेशियल, प्लकिंग, आईब्रोज ये सब कुछ करवाना पड़ता है। 10 दिन है सिर्फ, अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहा है, उसके हुक्मों को मानिए। अगर आप चांद देखने से पहले अपने इन तमाम कामों से फारिग हो चुके हैं तो 10 दिन तो कोई इतने मुश्किल नहीं होते, और फिर ईद की नमाज के बाद चले जाएं पार्लर, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ है जिससे फ़ायदा होगा, इससे मिलेगा क्या? इसके बारे में एक सहाबी थे तो उन्होंने नबी सल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मेरे पास जानवर ना हो कि मैं उसको कुर्बान करूं, किसी शख्स ने मुझे बकरी दी है कि जिसका दूध पीता हूँ और उसी से अपना गुजारा करता हूँ, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर दूँ? तो आपने फरमाया, ला नहीं, ऐसा ना करो। वलाकिन, और लेकिन, तुम नमाज के बाद अपने बालों, नाखनों और मूछों को तुरशवा लो और जेर नाफ बालों को साफ कर डालो, तुम्हें पूरी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। यानी बाज़ तो कहते हैं कि एक एक नाखून के बदले एक एक कुर्बानी का अजर है। अब 20 नाखून काटेंगे आप, पांच पांच हाथों के और पांच पांच पाँव के, तो कहाँ तक अजर जाएगा? ये अबू दाऊद की रिवायत थी जिसमें ये हुक्म दिया गया। इसी तरह आप देखिए कि इससे दूसरा काम हमें फिर क्या करना है कि चांद दिखते ही दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नी वल ईमान वस्सलामती वस्सलाम रब्बी व रब्बुकल्ला। ए अल्लाह, इस चांद को कर दे हमारे लिए अमन और अमान वाला, सलामती और सलाम वाला, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। यानी फिर इंसान चांद को मुखातिब करता है कि इस तरीके से ये काम किया जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसमें 9 ज़िलहज की खास तौर पे फजीलत है। इसके बारे में एक रिवायत आती है कि अल्लाह ताला 9 ज़िलहज को आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और आसमान वालों को जमीन वालों पर फख्र करके बताता है कि मेरे बंदों को देखो, वो दूर दराज से परागंदा सर और गुबार आलूद यहाँ पर आए हैं, मेरी रहमत की उम्मीद करते हैं और इन्होंने मेरे अजाब को देखा नहीं। यानी कि इसके बावजूद देखा नहीं, फिर भी अल्लाह ताला के अजाबों से बचने की दुआएं करते हैं और इस नवी तारीख को अल्लाह ताला दोजख से बहुत से लोगों को आजाद कर देते हैं। शैतान उस दिन आपको पता है कि अपने सर में खाक डालता हुआ भागता आता है कि आज तो मेरी सारी मेहनत जाया हो गई जो मैंने लोगों को रखा था इस नाते से कि वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करें या गुनाह करें, और आज अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। इब्ने खुजैमा की एक रिवायत है कि अरफा के दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दोजख से आजाद कर देता है। एक और रिवायत में कि अरफा के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है। आपको मालूम है ना कि इंसान की तख्लीक पे फरिश्तों ने थोड़ा सा इस्तफसार किया था कि इंसान क्या करेगा और इसको क्यों बनाया जा रहा है। तब अल्लाह ताला इंसानों की अच्छे अमल जाहिर करके उनको दिखाते हैं कि देखो, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदों को देखो, मेरे पास परागंदा सर गुबार आलूद आए हैं, मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन सबको माफ कर दिया। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, इनमें एक शख्स गुनाहगार भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इन सबको भी माफ कर दिया। यानी हाजी जब वहां पहुंच के अपने गुनाहों को माफ करवाते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनको माफ कर देते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला इन 10 दिनों में हाजिरी की वजह से फरिश्तों की जमात पर फख्र करता है और तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूँ, मगर हकूकुल इबाद माफ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो बंदे खुद बंदों के माफ करेंगे। नेक लोगों के गुनाहों को माफ करता हूँ और इनके सवाल को पूरा करता हूँ, और मुज़दलिफा में भी अल्लाह ताला नेक लोगों की मगफरत फरमाते हैं और इनकी सिफारिश को कबूल करते हैं। इब्ने माजा और तरगीब की एक रिवायत में है कि इबलीस और उसकी औलाद पहाड़ों पर चढ़कर हाजियों को देखकर परेशान होते हैं और चिल्लाते हैं। यानी उनकी तो सारी मेहनत चली गई ना, जब बंदों पर रब की रहमतें हो गईं, जब अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया, अपना कुर्ब दे दिया, तो वो शैतान यही तो चाहता नहीं जो उसके साथ मामला हो। तो लिहाजा जब इंसान को अल्लाह ताला तौफीक दे वो इन दिनों में को वहां जाके पुकारे अल्लाह ताला के साथ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको मुआफ भी कर देता है। बाज़ रिवायात में आता है कि उनकी दुआओं की कबूलियत यानी सख्त हो जाती है, अल्लाह ताला उसको जरूर ही यानी माफ कर देता है उस गुनाह को। एक रिवायत में आता है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अरफा की शाम को, अरफा कौन सा दिन? 9 का, अपनी उम्मत के लिए मगफरत की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, आपकी तमाम उम्मत को बख्श दूंगा, मगर जालिम और हकूकुल इबाद पूरा न करने वालों को माफ नहीं करूंगा जब तक के जालिम से मजलूम का हक न दिलाऊं। आपने अर्ज किया, ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मजलूम को जन्नत में जगह दे सकता है। इस शाम को भी आपकी दुआ मंजूर नहीं हुई। मुज़दलिफा में फिर सुबह इसी दुआ को दोहराया तो आपकी दुआ कबूल हो गई। और हदीस के रावी कहते हैं कि दुआ की कबूलियत पर आप मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप इस वक्त मुस्कुराया नहीं करते। अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, दुआ दी आपको। आपने फरमाया कि इबलीस ने जब मेरी दुआ की कबूलियत के बारे में जान लिया तो हाय हाय करता, सर पर मट्टी डालने लगा और मुझे इबलीस को देखकर हंसी आ गई। इब्ने माजा की रिवायत है। अब ये सारे गैब के मामले हैं, अल्लाह ताला ने हमसे छुपा लिए तो इसको रखना है। तो बहरहाल इन दिनों की कदर करनी है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जो रमज़ान इन दिनों के जो रोज़े हैं उसके लिए इख्तमाम करना है। युकफ्फिरु सनत अलमाज़ियता वलबाक़िया, यानी 9 ज़िलहज के रोज़े के लिए 2 साल के गुनाहों की माफ़ी है, और बाकी जो रोज़े हैं यानी यकुम से लेकर 8 तक, अब जब मर्जी रखें। हर रोज़ भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, दो इकट्ठे भी रख लें, लेकिन 9 का कम अज़ कम ना मिस करें। तो इससे भी इंशाल्लाह ताला इंसान के गुनाह जो है माफ़ होंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसके अंदर यानी जो और काम करने का है वो तकबीरात का है, अल्लाह अकबर कहना। और सहाबे कराम जो थे वो बाजारों में निकल जाते थे इन दिनों में तकबीरात कहने के लिए, और लोगों अल्लाह के नाम को बुलंद किया करते थे। तो इसके लिए आज हमारे घरों में अब देखिए कि अगर शैतानी आवाज़ें उठती हैं और हमारे बच्चे हर वक्त एक शोर हंगामा देखने के आदी हैं, तो आप इख्तमाम कर सकते हैं। खुद घर में पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। आजकल कैसेट सीडीज ऑनलाइन हर जगह से ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो कम अज़ कम इन दिनों में अल्लाह ताला की बड़ाई को जाहिर करना और साथ थोड़ा सा उनको इसका मतलब बताना, इसका मफहूम बताना कि क्या है इससे हिकमत, तो इसका अहतमाम हर मुसलमान घर में होना चाहिए। तकबीरात सुनते हैं एक बार ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इन लफ्ज़ों की शीरीनी क्या होती है। इसके बाद एक और अमल जो इस महीने के साथ ही हर घर के अंदर उसका जिक्र होने लगता है वो कुर्बानी है। जैसा कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में देखा कि अल्लाह ताला ने एक बूढ़े बाप को हुक्म दिया कि अपने मासूम अकलौते बुढ़ापे की औलाद बेटे पे उसकी गर्दन पे छुरी रख दो। कहने को ये ख्वाब की बात थी, कुछ उठला भी सकता था, ऐसी कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जब अपने दीन के कामों के लिए चुनता है तो फिर वो तावीलात नहीं करते बल्कि अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। आप उस दिन और उस मंजर को अपने जहन में भी अगर लाए ना तो इंसान की रूह हिल जाती है। किस तरह से बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी होगी, क्या सोचा होगा, ये हौसला कहाँ से आता है? याद रखिए कि ये अचानक नहीं होता। कुर्बानी करना एक वक्ती फैसला नहीं, ये तो पूरी ज़िंदगी के मुजाहदे का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी देखें तो कुर्बानियों का मजमूआ थी। जब इंसान अल्लाह ताला के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ दे लेता है ना तो फिर बड़ी चीज़ कुर्बान करना मुश्किल नहीं। अगर हम अपनी पसंद नापसंद अल्लाह के लिए कुर्बान ना कर सके, अपना वक्त अपना माल अपनी चीज़ें बचा बचा के रखें तो कहाँ हम अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे? आज हमें अगर बच्चों को दीन के नाम पे डिवोट करने की ही बात सिर्फ कर दी जाए जिसमें जान नहीं जाती, सिर्फ कुछ स्टेटस दुनियावी कम होने लगता है तो लोग उस पर भी परेशान हो जाते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। अब ये बच्चा कुरान सीखेगा, अब ये अल्लाह के दीन के लिए रहेगा, और हम समझते हैं कि हमने इसके ऊपर जुल्म किया। लेकिन हकीकत ये है कि जितना इंसान को जिससे प्यार होता है उतना ही फिर वो उस काम को करना आसान समझता है। तो असल में ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को ताज़ा करना है कि उन्होंने रहती दुनिया तक लोगों के लिए मिसाल बना दी कि अल्लाह ताला तुमसे जो मांगोगे वो देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लम से सवाल किया गया था कि ये कुर्बानी क्या है, ये हम कुर्बानियाँ क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। तो लिहाजा हर साल करोड़ों जानवर कुर्बान होते हैं, लाखों हाजी जो हैं वो सरजमीने मक्का में कुर्बानियां करते हैं, लेकिन इसकी रूहानियत को बरकरार रखना है। कुर्बानी क्यों की जाती है? फर्ज है? नहीं फर्ज, सुन्नत है, हाँ सुन्नत है, अजर बहुत है, लेकिन इसको एक बोझ समझते हुए और इसको दुनिया दिखावी देख करते हुए ये चीज दुरुस्त नहीं होगी। अगर हम कुर्बानी को करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन कुर्बानियां लेनी चाहिए, बेहतरीन। आपने फरमाया कि मोटे जानवर कुर्बान करो, कल कयामत के दिन पुल सरात पर ये तुम्हारी सवारियां होंगी। एक रिवायत में आता है कि कयामत के दिन ये सवारियां तोली जाएंगी, इनका गोश्त, इनका गोबर, इनकी हड्डी खाल हर चीज तोलेगी और फिर तुम्हारे नामे अमाल में जाएगी। बाज़ लोग कुर्बानी करते हुए भी बड़े कंजूसी का इजहार करते हैं, हम पे तो कर्ज है हमें फर्ज नहीं। यानी पहले कर्ज ले लेते हैं दुनियावी दईशात के लिए, फिर कुर्बानी की बात आए तो कहते हैं क्या हम पे कुर्बानी फर्ज है क्योंकि हम पे तो कर्ज है। है ना मजाक? कहते हैं ना कि दोनों तरफ से अपना ही फायदा ले लो। ज़कात की बात आए तो कहते हैं वो हम तो कर्ज वाले हैं, फिर हम पे कुर्बानी नहीं है, तो फिर ज़कात लेना शुरू कर दे इंसान दूसरों से, क्योंकि जो दे नहीं सकता तो फिर उसको लेना तो पड़ेगा। तो याद रखिए कि ये मोहब्बत के साथ है, फर्ज नहीं। जो करेगा उसको अजर मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लम तो कभी साहिब निसाब हुए ही नहीं, इसके बावजूद आपको था कि 100 100 कुर्बानियां करते थे, 63 कुर्बानियां अपने हाथ से की, बाकी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कटवाई, और वो उस दौर में तो ऊंट कटवाते थे। तो लिहाजा कुर्बानी मोहब्बत से करनी है, और उसके लिए भी यह है कि अच्छा जानवर खरीदा जाए, उसमें कोई नक्स ना हो, ऐब ना हो। लेकिन यहाँ इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो रूहानियत की कर रहे हैं, किसकी कबूल होती है? असल ये बात है देखने की, अल्लाह ताला ने सूरत मायदा में एक बात बयान की थी, और वो क्या थी? हाबील काबील का किस्सा है, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे। अल्लाह ताला उनके किस्से को बयान करने का नबी सल्लम को हुक्म देते हैं, वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक, और इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा ठीक ठीक सुना दो। क्या हुआ था? इज करबा कुर्बानन फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिन अल आखिर। जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की ना हुई। قال لأقتلنك، हसद में आ गया, कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। यानी कुर्बानी एक ही कबूल ना हुई दूसरे की, क्यों? इसलिए कि قال إنما يتقبل الله من المتقين। ये है असल बात कि अल्लाह मुत्तकियों की कुर्बानियां कबूल करता है। कुर्बानी के लिए तकवा की जरूरत है। अगर अमली जिंदगी में तकवा नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, हलाल और हराम का फर्क नहीं, तो कुर्बानी कैसे कबूल हो? दुनिया में कोई इंसान भी हमारी दी हुई चीज कबूल नहीं करता अगर हम उससे नाराज हों या हमारे उससे ताल्लुकात कमजोर हों, तो अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा? सूरह हज आयत 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन यनाल अल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह को ना तो खून पहुंचता है, तो सब मिट्टी में चला जाता है, और ना गोश्त पहुंचता है, वो तो तुम खा जाते हो। हाँ उसको क्या पहुंचता है? वला की यनालहु तक्वा मिनकुम, उसको तुम्हारा तकवा पहुंचता है। किस दिल से कुर्बानी की, कितना अल्लाह के नाम पे अपने जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना चाहते हो, तो लिहाजा तकवा की जिंदगी कुर्ब की जिंदगी है। अल्लाह का कुर्ब किसको मिलता है जो अल्लाह का खौफ ज्यादा रखता है। असल चीज कबूलियत है, काबिलियत नहीं। आप किसी को एक खाना बना के भेजें, वैसे आप उनसे नाराज हो, बात ना करें, किसी के हाथ कुछ पका के भेज दें, वो कबूल नहीं करता कि नहीं, उन्हें को पहले मुझसे बात करें। जब मेरी बात नहीं, जब मेरी इज्जत नहीं, तो मैंने खाने को क्या करना है। और इसके बरक्स कोई दोस्त हो तो आप उसको दाल भी बना के भेजते हैं तो वो खुशी से कबूल करता है। किस चीज़ का फर्क है? ताल्लुकात का फर्क है। कुर्बानी करने से पहले अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को देखना है। नाराज तो नहीं है, रूठा हुआ तो नहीं है, मेरे किसी काम पे नाखुश तो नहीं है। बस लोग ये भी एक हरजाना समझ के या एक कफारे समझ के या फिदिये दे के समझते हैं कि चलो छूट गए, कुर्बानी दे देंगे, बड़े बड़े बकरे ज़बह कर देंगे, लोगों में भी नाम हो जाएगा। तो वो लोगों में तो हो जाएगा, अल्लाह को क्या पहुँचेगा जो दुनिया में उसके लिए किया होगा। तो लिहाजा कुर्बानी करनी है। घर एक घर में से अगर एक बंदा भी सारों के लिए कर दे तो भी ठीक है, हर एक अलग अलग करे तो भी ठीक है। लोग पूछते हैं ये मसला कि क्या मियाँ बीवी अलग करें, अच्छा दोनों कमाते हैं तो उन पे है। ये सवाल कब पैदा होते हैं जब कुर्बानी की रूह नहीं पता। मैं उनको कहती हूँ देखें, आप किसी शादी में जाते हैं, आप पूरी फैमिली इनवाइटेड है, बस औकात आप एक ही गिफ्ट सारे घर वालों की तरफ से दे देते हैं, कफारा हो गया ना, खाना पूरी हो गई। लेकिन बाद जगह आप महसूस करते हैं कि ताल्लुक इतना करीबी है कि आपके बच्चे जो है उनके बच्चों को देते हैं, आप उनको देते हैं, यानी अलग अलग गिफ्ट करके हर फर्ज से जाते हैं। तो ये ताल्लुक की बात है, जो जितना देगा उतना पाएगा, उसके लिए उतना ही आसानी है। बस दफा ये होता है कि एक से ज्यादा कुर्बानियां दी जाती हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस कहते हैं ये मेरी तरफ से है, ये मेरी बीवी की तरफ से है, ये बच्चों के, ऐसा ना करें। एक बहुत ही प्यारा मसला हमारे पास, कराची में एक शेख अफजल साहब हैं, तो उनका एक लेक्चर सुना इस मौजू पे। तो उन्होंने कहा कि देखें कि अगर आप कहते हैं कि ये बकरा मेरी तरफ से है, मर्द कहता है अपना, ये दूसरा बकरा ये बीवी की तरफ से है, ये तीसरा बकरा जो है ये बच्चों की तरफ से है, और ये माँ बाप की तरफ से है, मिसाल है। अब हुआ क्या कि हर बकरे में से एक को सवाब मिला, दूसरे को तो नहीं मिलेगा ना, उसका नियत दूसरे की नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ठीक है, आपने चार बकरे करने हैं, आप चार ही करें, लेकिन एक बकरे पे क्या सोचें कि ये हम सब घर वालों की तरफ से है, शौहर बीवी बच्चे सब। फिर दूसरा करें, फिर कहें कि ये सब घर वालों की तरफ से। तो इस तरह एंड ऑफ द वे क्या होगा कि हर एक को चार चार कुर्बानियों का अजर मिल जाएगा। समझ रहे? यानी सवाब को बढ़ाने के तरीके क्या हैं कि इंसान अलग अलग करने की बजाय ऐसा ना करे। फिर उसके बाद अगर किसी फौजशुदगान है, माँ बाप हैं या रिश्तेदार हैं, किसी की तरफ से करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम मसाइल पे नहीं, हम उसकी रूहानियत पे बात कर रहे हैं। मैं आप सबको एक एक्टिविटी दूंगी कि इस साल जब आप कुर्बानी करें तो उस बकरे को खुद देखिएगा, मौका मिले तो खुद ज़बह करें, करना चाहिए, फिर ही ख्वाहिशें कुर्बान करना आसान होगा। और उस वक्त मंजर रखें जहन में वही बाप और बेटे का, कि बूढ़ा बाप है और बेटा उसके सामने लेटा हुआ है, और उस अहद को निभाने की कोशिश करनी है कि अल्लाह हम भी तेरे दीन के लिए कुर्बानियां कर सकते हैं। हम कहाँ से शुरू करें कुर्बानी, बकरे से, गाय से या भैंस से? नहीं, अपनी जात से। अल्लाह का दीन हम सबसे कुछ कुर्बानी मांगता है, और वो क्या है? अपनी जात मुझे दे दो, अपना वक्त मेरे साथ लगा दो, अपना माल मेरे रास्ते में लगा दो, तुम मेरे बन जाओ। मुश्किल लगता है अल्लाह वाला बनना? मुश्किल लगता है हमें देख के लोगों को रब याद आ जाए? मुश्किल लगता है? अपना हुलिया थोड़ा सा बिगड़ जाता है, चेहरा ज्यादा खूबसूरत नहीं रहता, बुरा लगता है? आप देखिए कि छोटे छोटे कामों से कुर्बानी शुरू होती है, जर्रे से कमाल तक बंदा कब पहुंचता है? जब छोटी छोटी चीजों को कुर्बान करने लगता है। हम ये जितना मर्जी सुबह शाम कहते रहें कि इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध, कि मैंने अपना चेहरा यकसुई के साथ उस जात के लिए कर दिया जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया, हनीफन मैं यकसू हूँ, क्या वाकई मैं फोकस्ड हूँ? हम अपने आप से पूछें। इतना सुनने और सुनाने के बाद क्या मेरी जिंदगी में यकसुई आ रही है? खुदा रुख हो रही हूँ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें तो खुदा रुख ही लगती है ना। हम क्या हैं? सब रुख, जिधर जिसका रुख है उधर रुख। हम मुआशरे के रुख पे जीते हैं, हम खानदानों के रुख पे जीते हैं, हम दोस्तों के रुख पे हैं। अल्लाह क्या चाहता है? कह दो कि इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया, और मैं पहला मुसलमान हूँ। ये कैफियत जिंदगी में जब आती है ना तो इंसान तड़पता है। यकीन करें, आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपकी कोशिश क्या होती है कि वो आपको कबूल कर ले, ऐसे ही है ना। कोई चीज़ मेरी तरफ से कबूल हो जाए, मैं महसूस करती हूँ कि दुनिया में जब हम आते हैं एक बहुत बड़ा वक्त इस दुनिया को देते हैं। अल्लाह ताला के साथ हमारे मामले कमज़ोर होने लगते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो उसका तरीका क्या है? क्या कुर्बे इलाही की ज़रूरत है कि नहीं? ये कुर्बानियाँ जो हर साल हम करते हैं, क्या उसने मुझे अल्लाह का कुर्ब दिया? कब आखिरी दफा मुझे महसूस हुआ था कि ये कुर्बानी करके मैं अल्लाह के करीब हो गई? बहुत कम, इसलिए कि रूहानियत नहीं है, सिखाया ही नहीं बड़ों ने कि क्यों कुर्बानियां की जाती हैं। बच्चों को तो वैसे ही दूर रखा जाता है इन चीज़ों से, जिस तरह तहज्जुद कुर्ब इलाही का जरिया है, जैसे इंसान को इबादत अल्लाह ताला की तरफ माइल करती हैं, इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह का होके रहने में जो मज़ा है ना, वो किसी और का होने में मज़ा ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आग में कूदे थे, किस चीज़ ने उनको कूदने पे मजबूर किया कि वो अल्लाह के हो गए थे? बेटे की गर्दन पे छुरी कब चलती है? जब इंसान अल्लाह का हो जाता है। घर बार छोड़ दो, क्यों हो गया? अल्लाह के हो गए थे। बाप को छोड़ दो, खानदान मुशरिक है, उनके लिए दुआ छोड़ दो, छोड़ दिया। बीवी बेटे को सहरा में छोड़ दो, छोड़ दिया। कभी आपने महसूस किया कि ये सारी कुर्बानियां अल्लाह ताला ने उनसे मांगी और उन्होंने क्यों दे दी? क्योंकि वो अल्लाह के हो गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जंगल में सहरा में रात को ले जाके कहा, ये हाथ में क्या है? कहा, असा है। क्या करते हो? कहा, बड़े फायदे हैं, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ दो। कहा, अच्छा फेंक दो इसको, ये है अल्लाह का दिन। तुम समझते हो मुझे फायदा है इस चीज में? अल्लाह ताला कहता है फेंक दो। ये तो नहीं कहा है अल्लाह क्यों फेंकू, क्या होगा, फेंक दिया। अल्लाह वाले हो गए थे ना, यकसू हो गए थे। नीचे गिरा तो सांप बनने लगा, रिंगता हुआ दौड़ता हुआ, खौफ आया तो कहा, नहीं इसको पकड़ लो। ये है कहानी। अल्लाह के कहने पे फायदे वाली चीजें जो हमारी नजर में फायदे हैं, वो बड़ी बड़ी तिजारतें हैं या वो बड़ी बड़ी नाफरमानियों की चीजें हैं। अगर अल्लाह कहता है छोड़ दो, तो छोड़ना पड़ेगा, खुद सुपुर्दगी। और बाज दीन के हुक्म जो सांप जैसे दौड़ते हुए महसूस होते हैं, उसको पकड़ना पड़ेगा। आज दीन के छोटे छोटे हुक्म हमें सांप और बिच्छों से ज्यादा डसते हैं। हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हम हज भी करके आ जाते हैं, हम रमजान के रोजे भी रखते हैं, हम हर जुमे तस्बीह नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जो कमी है वो क्या है कि हम रब के नहीं होते। और चाहता वो यही है कि रब के हो जाओ। कैसे पता चलता है कि बंदा रब वाला हो गया? उसका ताल्लुक बन जाता है, ऐसे ही है ना। आप दुनिया में किसी से खुश होते हैं तो फिर उसके बाद आपका आना जाना शुरू हो जाता है, लेन देन शुरू हो जाता है, फिर एक डेली बेसिस पे ताल्लुक कायम होता है। और कुछ लोग हैं वो जुड़ जाते हैं, अच्छा कुछ झड़ जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, सदा बहार ये मंजर चलता ही रहता है। अल्लाह ताला लोगों को आगे लाते ही रहता है, नेकियों के मौके आते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। يا الله ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما، اخلاص دے دے، सुन्नतों के मुताबिक काम करने की तौफीक दे। ये जो छोटा सा हमने कोर्स किया या अल्लाह, इसको कबूल कर ले। या अल्लाह, हमें वाकई तेरे सामने हाजिर होने वाला बना दे। या अल्लाह, तेरी दावत को सुन के लब्बैक कहने वाला कर दे। या अल्लाह, झुटलाने वाला ना करना। या अल्लाह, महरूम लोगों में से ना करना। या अल्लाह, हमें वो लोगों में ना करना कि जिनके लिए तू फैसला दे दे कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाना, मैंने तुम्हें नहीं चुनना। या अल्लाह, अपने दीन के लिए हमें चुन ले। या अल्लाह, हमारे अंदर अगर कुछ छुपी हुई सलाहियत है उसको जाहिर कर दे। या अल्लाह, इससे पहले कि मट्टी में मनो मट्टी के अंदर दब जाए, खैर को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। या अल्लाह, वक्त नहीं तो वक्त में बरकत दे दे। या अल्लाह, मसरूफियात दूसरी हैं तो उनको कम कर दे। या अल्लाह, अगर माल नहीं है तो या अल्लाह उस माल में तो बरकत दे दे। या अल्लाह, जो चीज़ तेरे रास्ते में लगती है उसमें बरकतें शुरू हो जाती हैं। या अल्लाह, हमारे नफ्स के शर से बचा, शैतानों के शर से बचा। या अल्लाह, इस मामले में हमें तुझसे मशवरा करने वाला बना। या अल्लाह, हम इस मामले में किसी और से मशवरा ना करें, हम करें कि ना करें, इसलिए कि जो तू हमारे हक में बेहतर जानता है वो दूसरे नहीं जानते। और वो लोग जो खुद दीन से दूर हैं वो हमें कहाँ आने देंगे। या अल्लाह, हमारे हाल पे रहम कर दे, खताओं को माफ़ कर दे। जो भी बात इस पूरी गुफ्तगू में सुन्नत के खिलाफ हो गई, या अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमारे उस्तादों पे रहमतें फरमा। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पे अपनी रहमतें फरमा, हमारे शागिर्दों पे अपनी रहमतें फरमा। जो लोग हमारे साथ इस काम में दिन रात मेहनत करते हैं, या अल्लाह तो उनकी उम्रों में बरकत दे, सेहत और आफियत दे, उनके माल में बरकत दे। जो बीमार हैं उनको सेहत दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे, इनके बच्चों को इनकी आंखों की ठंडक बना। जो कर्जों में डूबे हुए हैं, या अल्लाह उनको कर्जों से निकाल। या अल्लाह, सुख और चैन दे। न जाने कब हमें एक ऐसी पुकार सुननी पड़े कि जिस पे लब्बैक कहे ना कहे लेकिन जाना पड़ेगा। या अल्लाह, उससे पहले ही हमें तेरे दर में हाजिर होने वालों में से कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाब रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك